नमस्कार दोस्तों, तोतो चान में आपका स्वागत है। तोतो चान के इस कहानी में, इस किस्से में, उसकी बातों में एक जो नया है, ये है मासाओ चान। ये मासाओ चान नाम का एक बच्चा था। जब वो स्टेशन से घर आते जाते वक्त तोतो चान को ऐसी बस्तियां के पास से गुजरना होता था जिसमें कुछ कोरियाई लोग बसे हुए थे। उनकी पोशाक थी एक लंबा सा स्कर्ट और छोटा ब्लाउज जिसके आगे एक रिबन बंधा रहता था। वह हमेशा कुछ ना कुछ करते नज़र उसको आया करते थे। उनका एक बेटा था, उस बस्ती में एक लड़का था, एक जो लेडी थी वहाँ पर, उसका एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम था मासाओ चान। वो हमेशा अपने बच्चे को ज़ोर से ऐसे चिल्लाती थी, मासाओ चान ऐसे। तो जान को ये बड़ी उदासी भरा लगता था। तो बस्ती ओमाची ट्रेन की पटरियों की दाईं ओर बसी हुई थी। तो चान मासाओ चान को भी पहचानती थी। उम्र में वो उससे कुछ बड़ा लगता था, शायद दूसरी में पढ़ता रहा होगा, पर उसके स्कूल का नाम तो चान को नहीं पता था। उसके बाल उलझे रहते थे और उसके साथ हमेशा एक कुत्ता रहता था। एक दिन जब वह घर की ओर पैदल बढ़ रही थी, उस समय उसे मासाओ चांद दिखा। पैर चौड़े कर, हाथ कूल्हे पर टिकाए, घमंड से भरा खड़ा हुआ कोरियाई, ऐसे करके उसने तोतो चांद को चिल्लाया। उसकी आवाज बिल्कुल घृणा से भरी हुई थी। तोतो चांद डर गई। उसने तो उसको कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी वो उसको ऐसे कैसे बोल रहा था। अचानक यूं चिल्लाने से वह बेहद घबरा गई। घर पहुंचते ही उसने माँ को सब कुछ बताया। मासाओ चान ने मुझे कोरियाई कह के बुलाया, उसने कहा। माँ ने कहा, अपना मुंह धप से हथेली पे धर लिया बिल्कुल आश्चर्य में। तोतो चान ने गौर किया कि उसकी आंखें भी डबडबा आई, मतलब उनकी माँ की जो आंखें थी तोतो चान की, वो भी भर आई। तो तोतो चान को लगा कि कोरियाई शब्द का मतलब बहुत बुरा होता होगा। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग किसी को उसकी जगह विशेष से, उस प्रांत विशेष के नाम से बुलाने लगते हैं, और जो बच्चे ऐसा नहीं जानते हैं वो उसको गलत समझ लेते हैं। जैसे मतलब जो भी अगर इस प्रांत के लोग होंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रही हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया है। हम दिल्ली में जब गए तो दिल्ली में जो बस वाले हुआ करते थे वो अक्सर उनकी भाषा तू तू करके बात करने की है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो यूपी बिहार ऐसी जगहों से थे, तो यहाँ पर तू वाली भाषा नहीं चलती है। तो किसी ने इस बात का बुरा मान लिया कि ये बस वाले ने तू तू करके कैसे बुलाया। अब वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ बैठे, और जब भिड़े तो उस बस वाले ने उसको बिहारी बिहारी करके चिल्लाना शुरू कर दिया, बिहारी कहीं का, बिहारी कहीं का। तो काफ़ी जो लोग थे, कुछ बच्चे थे, वो सब सोचने लगे कि ये बिहारी मतलब कोई काली होती होगी, ये बैड वर्ड है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को उसकी जगह विशेष से बुलाना शुरू कर देते हैं और वो उनके लिए एक अपशब्द हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बच्चा भी कोरिया से आया होगा, वहाँ पे किस परिस्थितियों में वो लोग रहे होंगे जहाँ से उनको वहाँ से वापस यहाँ पर आकर बसना पड़ा, तो लोग उसको कोरियाई कोरियाई करके बोलना शुरू कर देते हैं। आंसू पोंछ कर माँ ने धीमे से तोतो चान को समझाया, तुम जापानी हो, मासाओ चान एक ऐसे देश से आया है जिसका नाम कोरिया है, पर वह भी तुम्हारी तरह एक बच्चा है। तोतो चान, तुम कभी भी बड़ी होकर यह न सोचना कि लोग अलग अलग होते हैं। ऐसा न सोचना कि कोई जापानी है तो कोई कोरियाई है। मासाओ चान से बुरी तरह कभी मत पेश आना। यह बहुत बुरी बात है जो लोग सोचते हैं कि कोरियाई होने से ही कोई बुरा आदमी हो जाता है। तोतो चान के लिए यह सब समझना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो तो थी बच्ची क्लास वन की, पर वह इतना जरूर समझ गई कि मासाओ चान एक ऐसा लड़का था जिसे लोग अकारण ही बुरा कहते थे। शायद इसलिए उसकी माँ हमेशा उसे ढूंढती रहती थी। अपनी तीखी आवाज में उसे पुकारती रहती थी। शायद वह यह सोचती होगी कि बच्चा आखिर गया कहाँ। अगली सुबह तोतो चांद बस्ती के पास से गुजरी तो उसने उसकी माँ को फिर से पुकारते सुना, माँ साओ चांद। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने मन ही मन ठाना वह कोरियाई ना सही, पर अगर मासाओ चांद ने उसे फिर से कोरियाई कहकर पुकारा तो वह जवाब देगी, हम सब तो बच्चे हैं, हम सब एक से हैं, उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करेगी। मासाओ चांद की माँ की पुकार में उलझन और आशंका का पुट था। ऐसी आवाज थी उसकी जो देर तक हवा में तैरती रह जाती थी, जब तक किसी जैसे कि ऐसा लगता है चलती ट्रेन की आवाज चली जाने पे, ट्रेन चली जाने पर उसकी आवाज कुछ देर तक के लिए आंखों कानों में गूंजती रहती है। दुख और रुलाई से भरी उसकी आवाज को एक बार सुनने पर कोई उसे कभी भुला नहीं सकता था। तो दोस्तों, हम सब भी ऐसी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को इन चीजों से जरूर बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करने दिया जाए जिससे कि दूसरे बच्चे की मना स्थिति पर बुरा असर पड़े। अक्सर ऐसा हो जाता है, बच्चे स्कूल में अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। उन दिनों तोतो चांद की दो ही इच्छाएं थी, पहली तो ब्लूमर पहनने की और दूसरी अपने बालों की चोटियां बनाने की। अपने से बड़ी लड़कियों को वह अक्सर रेलगाड़ी में चोटियां बांधे देखा करती थी। उसका दिल चाहता था कि उसके भी बाल बड़े हो जाएं। उसकी खुद की क्लास की सभी लड़कियों के बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, लेकिन वो बड़ी लड़कियों से बड़ी आकर्षित थी। तोतो चांद के बाल उनसे कुछ लंबे ही थे। टेढ़ी मांग निकाल कर माँ उन्हें रिबन से बांध दिया करती थी। माँ का कहना था वह ऐसे ही अच्छी लगती है, पर वह चाहती थी कि बाल इतने लंबे हो जाएं कि वह चोटियां बनवा सके। आखिरकार एक दिन माँ से उसने दो नन्नी नन्नी चोटियां बनवा ली। माँ ने मुश्किल से ऊपर रबर बैंड लगाकर बारीक रिबन से उन्हें बांधा था। उसे लगने लगा कि वह बेहद बड़ी हो गई है। आईने में देखते ही उसे यह समझ में आ गया कि उसकी चोटियां ट्रेन में देखी लड़कियों के मुकाबले में पतली थी और जैसे किसी जानवर के पूंछ जैसी लग रही थी। पर फिर भी वह रॉकी के पास दौड़ी। गर्व से भर कर उसने उसे दिखाया। रॉकी ने दो एक बार आंखें झपकाई। काश मैं तुम्हारे बालों की भी चोटियां बना सकती रॉकी। जब वह ट्रेन में बैठी तो गर्दन सीधी तानी हुई थी। उसे डर था कि सिर को ज्यादा हिलाने डुलाने से कहीं उसकी चोटी ना खुल जाए। कितना अच्छा हो अगर कोई मेरी चोटी देखे, उसने ऐसा सोचा, और कहे वाह कितनी सुंदर चोटियां हैं। पर ना किसी ने उसकी चोटियां देखी। पर जब वह स्कूल पहुंची तो लोग उसे बच्चे उसे चिढ़ाने जरूर लगे। सभी बच्चे कहने लगे, अरे ये देखो पिगटेल्स आ गई, पिगटेल्स आ गई। तो चांद फूली ना समाए कि उसकी चोटी को भी पिगटेल्स कहा जा रहा है। पर लड़कों पर उसकी चोटियों का कोई असर नहीं हुआ। खाने की घंटी के बाद उसकी क्लास का एक बच्चा ओए अचानक ऊंचे स्वर में बोला, वाह तोतो चांद अपने बाल नई तरह से बनाई है। तोतो चांद तो यह सोचकर फूली नहीं समाई और बिल्कुल खुश हो गई कि अरे वाह उसकी चोटियों को लड़के भी देख रहे हैं। उसने गर्व से कहा, पिगटेल्स है ये, पिगटेल्स। तब वह और पास आया, चोटियां हाथ में पकड़ी और कहने लगा, मैं थक गया हूँ, कुछ देर इनका सहारा ले लूं। अरे ये तो रेल में लटकने वाले चमड़े के हाथों से भी अच्छी है। पर इतना सब सुनने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई। उस बच्चे ने नन्नी तोतो चांद से, क्योंकि वो दुगना बड़ा था तो उसने अपनी क्लास का वह सबसे बड़ा और मोटा लड़का भी था, जब उसने जोर से चोटियां खींची तो तोतो चांद धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अपनी प्यारी चोटियों को यूं हत्ता कहलवाने से तो उसे बुरा कम ही लगा था, यूं जमीन पर गिरना उसे बहुत बुरा लगा। उसने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा और कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। वह अब जोर लगा के हैया कहता हुआ उन्हें खींचने लगा। उस लड़के ने उसकी चोटी को और खींचा, ठीक वैसे ही जैसे खेल दिवस पर रस्सा कसी टग ऑफ वॉर के टाइम खींचा जाती है रस्सी को। तोतो चांद के लिए चोटियां बड़प्पन की निशानी थी। उसने सोचा था कि सब उससे बेहद अदब से पेश आएंगे। उसे लगा था कि चोटी बांधने से वो बड़ी हो गई है, अब सब उसे बड़ा समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। पर रोते हुए वो हेडमास्टर जी के दफ्तर में पहुंची, उनके पास पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और तोतो चांद अंदर घुसी तो वह रो रही थी। वो नीचे झुक गए। क्या हुआ? उन्होंने कहा तोतो चांद से। क्या हुआ? उसने पहले अपनी चोटियां संभाली, देखा कि कहीं खुल तो नहीं गई हैं, तब कहा, उस ओए ने जोर लगा के हैया कहते हुए मेरी चोटियां खींची। हेडमास्टर जी ने उसकी चोटियां देखी। उसके आंसू से भरे चेहरे के विपरीत वे चोटियां खुशी से नाचती सी लग रही थी। वे बैठ गए। तोतो चांद को अपने सामने बिठाया और हमेशा की तरह अपने टूटे दांतों की परवाह किए बिना मुस्कुराए। रो मत, उन्होंने कहा। मास्टर जी ने कहा, रो मत, तुम्हारी चोटियां तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपको पसंद आई। तोतो चांद खुश हो गई। अब उसने आंसू पोंछ लिया अपना। बहुत सुंदर है, हेडमास्टर जी ने कहा। तोतो चांद ने रोना बंद कर दिया। अब मैं नहीं रोऊंगी, ओए जोर लगा के हैया कहेगा तो भी नहीं रोऊंगी, हेडमास्टर जी ने उससे सहमत होते हुए अपना सिर हिलाया। वे मुस्कुराए। तोतो चांद भी मुस्कुराने लगी। अब उसका हंसता चेहरा उसकी चोटियों से मेल खाने लगा। हेडमास्टर जी से झुक कर विदा लेने के बाद वह अपने साथियों के पास वापस खेलने चली गई। रोने की बात वह भूल भी चली थी। इतने में ओए सिर खुजलाता खुजलाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी चोटियां खींची, उसके लिए माफ़ करना, उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से कहा। मुझे हेडमास्टर जी ने बुलाकर डांटा, कहा कि लड़कियों से हमेशा अच्छी तरह पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तोतो चांद को आश्चर्य हुआ। या तो नई बात थी, इससे पहले उसने किसी को यह कहते नहीं सुना था कि लड़कियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर जगह लड़कों की ही पूछ होती थी। वह कई परिवारों को जानती थी जहाँ ढेरों बच्चे थे उनमें, पर हर जगह नाश्ता खाना सब लड़कों को ही पहले दिया जाता था। लड़कियाँ बोलती, शोर मचाती तो उनसे कहा जाता, लड़कियाँ दिखनी चाहिए पर उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतना होते हुए भी हेडमास्टर जी ने ओए से कहा था लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए। तोतो चांद को पहले तो बात बहुत अजीब लगी, फिर लगा कि बात तो अच्छी है, कोई ख्याल रखे तो कितना अच्छा लगे, और ओए उसके लिए तो यह एकदम सही था, उसने कैसे मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। लड़कियों से अच्छा व्यवहार करना, कोमलता बरतना, यह सब उससे कहा गया था। तो मोए में ओए के लिए डांट सुनने का यह पहला और आखिरी मौका था। उसके बाद उस बच्चे ने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की, कभी किसी को चिढ़ाया नहीं, छेड़ा नहीं, तंग नहीं किया। सच में दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात मास्टर जी ने कही। हमें ही अपने बच्चों को इस लायक बनाना होगा कि वे अपने क्लास की और अपने साथ खेलने वाले या कहीं पे भी जो लड़कियां हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और ये शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ये चीज़ें खुद से नहीं सीखते, ये हम बड़ों से सीखते। अगर हमारे घर में हम अपने घर की औरतों के साथ ढंग से बात नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो जो बच्चे हैं वो भी यही सीख लेते हैं कि हमें इनके साथ ऐसे ही बात करनी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आप अपने घर के बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनके सामने हमें कैसी बात करना है, कैसे पेश आना है, ये भी ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।